आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनने से कई गुना बढ़ गई मिर्जापुर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 283 चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, तत्परता और पारदर्शिता के साथ करें अपने दायित्वों का निर्वहन। लोकसभा में पारित हुआ आवर्जन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह विधेयक। और प्रदेश भर में आज अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। माहौल बिगाड़ने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मिर्जापुर जिले में 500 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बीते 8 वर्षों की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनने के बाद मिर्जापुर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना की वृद्धि हुई है।
आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूँ। माँ विंध्यवासिनी का एक कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ मिर्जापुर की धरती से जाता है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन किया। उन्होंने वहां चैत्र नवरात्र मेले की तैयारियों, जनपद के विकास कार्यों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग और गृह विभाग के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 283 चिकित्सा अधिकारियों एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से अपील की कि वे पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
आज आयुष के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और मैं बार बार कहता हूं, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है, हर गांव को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हमारे आयुष के सेंटर, आयुर्वेद हॉस्पिटल और जो हमारे अन्य आयुष के जो कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये संस्थान अपने आप में हेल्थ टूरिज्म के नए अड्डे बन सकते हैं।
प्रदेश भर में विकास उत्सव के अंतिम दिन कल अलग अलग जिलों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में कार्यक्रम हुए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरकार में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अमेठी के गौरीगंज में आयोजित मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल बांटी। वाराणसी में प्रदेश के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। परिवहन विभाग प्रदेश के सभी जनपदों में 1 से 30 अप्रैल तक अवैध ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगा। प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। परिवहन आयुक्त ने अभियान को लेकर कल विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्रवाई की रिपोर्ट हर शुक्रवार को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। पुरस्कार के लिए पात्र बच्चे की आयु 31 जुलाई 2025 तक 5 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा ने कल आवर्जन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य आवर्जन कानूनों को आधुनिक बनाना है। इसमें पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीजा पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने, भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए वैश्विक मानदंड सुनिश्चित करने और अनुसंधान तथा विकास और विनिर्माण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त अप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व है और अप्रवासन एवं विदेशियों विषयक विधेयक 2025 प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा। ये ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, ट्रैक ड्रिवन भी बनेगा, टाइम बाउंड भी बनेगा और ट्रस्टवर्दी भी बनेगा।
प्रदेश भर में ईद उल फित्र से पहले रमजान के अंतिम जुमे पर आज अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इसे शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक ने अलविदा की नमाज के दौरान CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर जोन और सेक्टर स्कीम के तहत निगरानी रखने को कहा है। साथ ही अलविदा या ईद पर किसी नई परंपरा की अनुमति न देने के निर्देश दिए हैं। DGP ने अधिकारियों को पुलिस, PAC व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करने के निर्देश भी दिए हैं। सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों पर भी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
प्रदेश के सभी जिलों में कल विश्व TB दिवस संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। यह जानकारी राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा।
24 मार्च 2025 को भारत सरकार ने नई दिल्ली में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया था। इसमें सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों और शासन को भी आमंत्रित किया गया था। इस कारण से 24 मार्च को जनपद स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस का समारोह करना संभव नहीं था, तो इसलिए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य प्रदेश ने ये पत्र जारी करके सभी जनपदों को कहा था कि आप 29 मार्च को अपने यहाँ विश्व क्षय रोग दिवस का समारोह कर लें, जिसमें जो हमारी पंचायतें टीबी मुक्त हुई हैं उनके माननीय प्रधानों को सम्मानित किया जाता है।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि वेब्स कार्यक्रम विश्वभर में तकनीक से जुड़े लोगों को एक ही मंच पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। श्री द्विवेदी ने कल मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और वे CEO गोलमेज बैठक के प्रमुख भी होंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के खिलाड़ियों ने दिल्ली में हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पैरा पावर लिफ्टिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लखनऊ की टीम ने 1 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 4 पदक प्रतियोगिता में हासिल किए। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल इस आयोजन का समापन हो गया। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन के एक मैच में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइज हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने 4 ओवर पहले ही 5 विकेट खोकर निर्धारित रन बना लिए और जीत दर्ज की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनने से कई गुना बढ़ गई मिर्जापुर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 283 चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, तत्परता और पारदर्शिता के साथ करें अपने दायित्वों का निर्वहन। लोकसभा में पारित हुआ आवर्जन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुसंधान और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह विधेयक। और प्रदेश भर में आज अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। माहौल बिगाड़ने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।